प्रातः क्लास से बात है। 5 जून 1968 पहले पेज के मध्याह्न की बात चल रही थी। कई मनुष्य ऐसे हैं जो ब्रह्मा को देख करके मुझते हैं, ये ब्रह्मा क्यों बैठा दिया है, ये ब्रह्मा कहाँ से आया। अरे इतने ब्रह्मा कुमारी आश्रम हैं, उनमें इतनी ब्रह्मा कुमारियां देखने में नहीं आती है क्या। इतनी ब्रह्मा कुमारियां हैं, किसकी कुमारियां, ब्रह्मा की कुमारियां, ब्रह्म ने बड़ी मां माने मां, इतनी ब्रह्मा कुमारियां हैं तो ब्रह्मा बड़ी मां के साथ बड़ा बाप भी तो होगा, प्रजापिता भी तो होगा, जरूर होगा। नहीं तो प्रजापिता बिगर प्रजा कैसे होगी। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा से ही प्रजा हो जाएगी, ब्रह्मा के साथ प्रजा पिता भी चाहिए, पिता के बिना संतान कैसे पैदा होगी। शिव बाबा की संतान तो ठीक है, परंतु प्रजा के रूप में कैसे आवे। तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा, बाप ने समझाया है, इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं, इनके प्रजापिता और ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत में, बहुत जन्म है 84 और 84 जन्मों का भी, 84 में जन्म का भी जो अंत होता है वानप्रस्थ अवस्था, उसमें प्रवेश करता हूं। नहीं तो ये रथ कहां से आवे। ऊंच के ऊंच बाप है तो जरूर ऊंची के ऊंचे रथ पकड़ेगा ना। रथ तो गाया हुआ है, नाम ही देते हैं भागीरथ। रथ शिव बाबा के लिए है, परंतु रथ में कैसे आते हैं इसी बात में मुझे जाते हैं। अरे इसमें मुझने की क्या बात है, सोल प्रवेश करती है ना, वो तो मनुष्य आत्माएं हैं, उनको तो अपना सूक्ष्म शरीर होता है, शिव को तो अपना न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो बिंदी ही रथ में प्रवेश करती है। तो रथ जरूर चाहिए, परंतु कृष्ण तो हो न सके क्या। रथ चाहिए तो, लेकिन इस रथ में आता है पहले पहले बाप में आवेगा या बच्चे में आवेगा, बाप को बीज कहा जाता है। तो मनुष्य सृष्टि का जो बीज बाप है वो सब प्रजापिता में आते हैं। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे। ऊपर से तो नहीं बोलेंगे ना, जैसे मुसलमान लोग कह देते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। अब अल्लाह मियां को निराकार बताते हैं तो कहां से फरमाया? कहते हैं अर्श का वासी है, खुदा अर्श में रहता है फर्श में नहीं रहता। तो क्या आसमान से फरमाया? आसमान से आवाज आई? अब बाप कहते हैं मैं ऊपर से तो नहीं बोलूंगा। ये ब्रह्मा कहां से आया? बाप ने सुनाया मैं इनमें अर्थात प्रजापिता में और ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए वो खुद नहीं जानते हैं अपने जन्मों को, मैं सुनाता हूं। इन बातों में बहुत मुझे हुए हैं। अब कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं, उनको तो अपना रथ है ही। कष्ट कहने से फिर तो भागीरथ तो हो न सके। कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता है क्या? भाग्यशाली रथ प्रिंस का होता है या प्रिंस के बाप का होता है? बाप तो राजा होता है, प्रिंस तो राजा के अधीन होता है। तो भाग्यशाली कौन हुआ, अधीन या अधिकारी? अधिकारी को ही भाग्यशाली कहेंगे। तो बच्चों को अंदर में ये बातें घोटनी चाहिए, माने विचार सागर मंथन करना चाहिए। June 5, 1968 की वाणी का दूसरा पेड़ ये तो बच्चे जानते हैं। यहां वह बातें तो है नहीं जो शास्त्रों में लिखी हुई है। क्योंकि यहां तो सुनाने वाला एक है और शास्त्रों में लिखने वाले तो अनेक हैं। बाकी ये भागीरथ वाली बात ठीक है, भाग्यशाली रथ लिया। विचार सागर मंथन की बात भी ठीक है, विचार सागर मंथन हुआ अभी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे एक एक की बुद्धि ज्ञान की बातों में, सृष्टि चक्र की बातों में चल रही है या नहीं चल रही है? रचयिता और रचना के बारे में नंबरवार बुद्धि चलती है या नहीं चलती है? चलती है। तो विचार सागर मंथन तो हो रहा है, ये विचार सागर मंथन पूरा भी होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? पूरा होगा। जब पूरा होगा तो भरा हुआ कलश ज्ञान का किसको दिया जाएगा? शास्त्रों में क्या लिखा है? लक्ष्मी को दिया गया। ये बातें ठीक है, झूठी बात नहीं है ये। फिर लक्ष्मी ने औरों को अमृत पिलाया। क्या अमृत का असर दूसरों के ऊपर अच्छी रीति कब हो? पुरुषों को अमृत कलश क्यों नहीं दिया गया? स्त्री को क्यों दिया गया? हाँ, प्योरिटी की पावर कन्याओं माताओं में पुरुषों के मुकाबले जास्ती होती है, इसलिए मुरली में बोला है पुरुष तो सार दुर्योधन दुशासन, जोर जबरदस्ती करने वाले। कन्याओं माताओं में तो लाज रहती है, तो लक्ष्मी को अमृत दिया गया, उसने फिर औरों को पिलाया। बाप भी कहते हैं कन्याओं माताओं के मुख से ये ज्ञान अमृत अच्छा लगता है। पुरुषों को ज्ञान सुनाने में आगे नहीं रहना चाहिए, किसको आगे करना है? कन्याओं माताओं को आगे करना है, तब ही स्वर्ग के गेट खुले। जब कन्याओं माताओं को आगे किया गया तो माता के द्वारा स्वर्ग के गेट खुले। परंतु परमपिता परमात्मा शिव को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार नहीं है। अरे भगवान भी विचार सागर मंथन करेगा क्या? भगवान तो त्रिकालदर्शी है ही है, परंतु जिस तन में प्रवेश करता है वो कोई सदाकाल त्रिकालदर्शी नहीं होता। अंतिम जन्म में पतित बन पड़ता है तो विचार सागर मंथन करना पड़ता है। जिस रथ में प्रवेश करता हूं वो अपने जन्मों को नहीं जानते, नहीं जानते इसका मतलब विचार सागर मंथन करने की दरकार है या नहीं है? है। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उसमें नॉलेज है, उसमें भी नॉलेज देने वाला कौन है? वही परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करता है, वो ही जानते हैं, तुम तो नहीं जानते थे। अभी यह बात अच्छी रीति समझना है। क्या? कि विचार सागर मंथन कौन करता है? अरे नंबर बार विचार सागर मंथन करते हैं जिन्होंने जन्म लिए हैं, अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। अभी बाप आया हुआ है बताने के लिए तो जानेंगे ना, जानेंगे तो जरूर विचार सागर मंथन भी करेंगे। उन विचार सागर मंथन करने वालों में जो मनुष्य सृष्टि का बीज है बाप, उसको तो बहुत ही विचार सागर मंथन करना पड़े। ये मंथन की बातें अगर समझेंगे नहीं तो देवता पद कैसे पाएंगे? बाप समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए। बाकी जो आत्मा नहीं बनते हैं वो तो कुछ भी नहीं जानते। बाप किसको पढ़ाते हैं? देवमानी सांडों को पढ़ाते हैं या आत्माओं को पढ़ाते हैं? इसलिए बोला आत्मा रूपी सुई की कट निकलती है देवहन की, तब बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखते हैं। तो बाप किसको पढ़ाते हैं? देह अभिमान वाली सुई को नहीं पढ़ाते हैं, देह अभिमानियों को नहीं पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? आत्मा अभिमानियों को पढ़ाते हैं। देह अभिमानी तो कुछ भी नहीं जानते, उनका है सारा भक्ति मार्ग। तो ब्राह्मणों में भी दो वर्ग हो गए, एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, उनको देह अभिमानी कहें या आत्मा अभिमानी कहें? देह अभिमानी। कितना देह का अहंकार रहता है। और दूसरे हैं गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे आत्मा अभिमानी ब्राह्मण, वो थोड़े हैं। और रावण संप्रदाय जास्ती है, उनका है सारा भक्ति मार्ग का पसारा। अभी भी देखो बीके वालों की संख्या ज्यादा है या पीबीके वालों की संख्या ज्यादा है? तो भक्ति में विस्तार बहुत होता है। ज्ञान में विस्तार नहीं होता है, ज्ञान को बीज कहा जाता है, बीज को विस्तार नहीं कहेंगे। बीज तो आदि में बीज होता है और जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तब फल में बीज आता है, बाकी बीज बीच में जब झाड़ छोटे से बड़ा होता है तो बीच में बीज सारा गुप्त हो जाता है। एडवांस पार्टी जो बीज रूप आत्माओं की पार्टी है वो कोई इतनी विस्तार को पाने वाली नहीं है। कितनी? जितने ये रावण कुंभकर्ण संप्रदाय फैले हुए हैं। भक्ति मार्ग को बिल्कुल अलग कहेंगे और ज्ञान मार्ग को बिल्कुल अलग रखना है। पाप आकर के समझाते हैं, कहते हैं अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठ चुका है। नाव बेड़ा या जहाज होता है ना, तो जब किनारे पाता है तो लंगर डाल देते हैं तो वही थम जाता है। तो बाप कहते हैं अब तुम्हारा लंगर उठ चुका है भक्ति मार्ग की दुनिया से, अभी ज्ञान मार्ग में चल पड़ा है। बाप बच्चों को मुख्य बात यही समझाते हैं कि पहले पहले दो बाप का परिचय दो, संत महात्मा ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुमको दो बाप हैं। वो तो बाप को जानते ही नहीं। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको ज्ञान देता हूं, बाकी तो सब अज्ञान ही सुनाते हैं। 2500 साल से अज्ञान सुना सुना करके सृष्टि की हालत अच्छी बनाई खराब कर दी, खराब कर दी। बाप ने जो ज्ञान दिया था वो प्रायः लोप हो जाता है। कहीं न कहीं शास्त्रों में अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में चित्रों में निशानियां बची हैं, बाकी तो सारा प्रायः लोप है। तो दो बाप हैं, एक है निराकारी बाप और दूसरा है साकारी बाप। दोनों बेहद के बाप हैं, निराकारी बाप निराकार आत्माओं का बाप और साकारी बाप साकार जितने भी मनुष्य मात्र हैं इस दुनिया में सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक उन सब का बाप प्रजापिता वो साकारी बाप है। तो समझाया तो बहुत अच्छा जाता है परंतु माया ऐसी है, माया ऐसी है जो कशिश करके बुद्धि को खींच करके गर्द में ले जाती है। आत्मिक स्थिति में टिकते ही नहीं, आखिरी देह की गंध में ही गिर पड़ते हैं, पतित बन पड़ते हैं। पतित बनते हैं तो क्या होता है? आत्मा की शक्ति छीण हो जाती है, मन भी डल हो जाता है, मन बुद्धि की ताकत डल हो जाती, उसमें ज्ञान चल न सके, ज्ञान की बातें रमण नहीं करेंगी, कण की शक्ति भी छीण हो जाती है और फिर बीमारियां बढ़ती, कर्म भोग बढ़ता है तो धन भी, बीमारी में धन लगाना पड़ता है कि नहीं, धन भी छीण होता है। हर तरीके से पतित बनते जाते हैं, नीचे गिरते जाते हैं। बात समझाते हैं ये वैश्यालय है क्या, इसमें सब पतित होते हैं। वैश्यालय की दुनिया में, पतित दुनिया में सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। इस वैश्यालय का विनाश होना है। अभी मैं शिवालय की स्थापना करने आया हूं, जिसमें आया हूं वो भी पतित है या पावन है? जिसमें आया हूं वो भी पतित है। इसलिए बोलते हैं बड़े से बड़े काम ही कांटे में आकर उसको बड़े से बड़ा किंग फ्लावर बनाता हूं। सतयुग को कहेंगे शिवालय। कोई पूछे शिवालय किसने स्थापन किया है? क्या जवाब देंगे? अरे शिवालय शिव ने स्थापन किया, और शिव तो बिंदु है, बिंदु कैसे स्थापन करेगा? जरूर बिंदु कोई साकार तन में आया है, और साकार तन में आता है तो उसका नाम पड़ता है शिव बाबा। जब तक प्रवेश नहीं करता है तब तक बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप है, बाबा ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे। जब प्रवेश करता है तब है बाबा। तो पूछते हैं शिवालय किसने स्थापन किया? बोलो शिवालय शिव ने स्थापन किया। किसके द्वारा?
ग्रैंड फादर
के द्वारा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसका कोई बाप है ही नहीं। शिव को ग्रैंडफादर कहेंगे नहीं कहेंगे? धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि, परंतु उन ग्रेट फादर्स का भी बाप कौन? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिसको उन धर्मों में भी एडम और आदम के रूप में नाम से पुकारते हैं। उस आदम का नाम भारत में क्या है? क्या नाम रूप देते हैं जिसका कोई बाप नहीं, आदिदेव शंकर, जैनियों में उसे कहते हैं आदिनाथ। तो सेवन है शंकर के द्वारा, जिसमें चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा तो विराजमान है ही, उसके द्वारा शिवालय स्थापन किया, उसका नाम पड़ा शिवालय। इसके अपोजिट में नाम क्या है? वैश्यालय। किसने स्थापन किया होगा? वैश्यालय स्थापन किया होगा। इस भारत का नाम किसने डुबोया? शिव ने डुबोया जो शिवालय बनाता है, या वैश्या ने डुबोया जो वैश्यालय बनाती है? माया को क्या कहेंगे? माया को क्या कहेंगे? सखी साध्वी कहेंगे या वैश्या कहेंगे? शिवालय शिव बनाते हैं और वैश्यालय वैश्याएं बनाती हैं। तो बोलो, शिव बाबा ने शिवालय स्थापन किया, उसका नाम ही क्या है? नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर। तो शिवालय पड़ा शिव नाम के आधार पर, माने निराकारी स्टेज वाला जो है वो शिवालय स्थापन करता है, और साकारी स्टेज वाले देवान वाले वैश्यालय बनाओ। नाम ही है वैश्याल, तो किसने स्थापन किया होगा? जरूर उन वैश्याओं ने ही स्थापन किया होगा जो नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती है, आओ वैश्यालय में। ये वैश्यालय की दुनिया है। पांच विकार रूपी माया रावण है, इसने वैश्यालय बनाया। क्या कहा? वैश्यालय किसने बनाया? माया रावण ने, अकेली नहीं है, इसके अनेक रूप हैं। पांच तो विकारी रूप हैं और पांच पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, जिनसे ये देह बनती है। देह का संघात किससे बनता है? पांच तत्वों से, पंचभूतों से। तो भूत प्रेत हैं। दूसरा नाम है रामराज्य और रावण। रामराज्य की स्थापना कौन करते हैं? जरूर कहेंगे राम, नाम ही है रामराज्य। सत्युग को क्या कहेंगे? सत्युग में किसका राज्य होता है? जरूर राम ने स्थापन किया होगा, तो नाम पड़ा रामराज्य। और द्वैतवादी युग आता है द्वापर, वहां से नाम पड़ता है रावण राज्य। तो ये नाम तो बिल्कुल कामन है, रामराज्य और रावण राज्य। राम को एक सिर दिखाते हैं और रावण को दस सिर दिखाते हैं। क्या मतलब? रावण अनेक मतें देता है और राम एक मत देते हैं। रावण की अनेक मतें हैं, दिन बनाती है या रात बनाती है? अनेक मतों से होता है अंधियारा, भटकते हैं। किसी ने इधर रास्ता बता दिया, एक मत दे दिया तो उधर चल पड़े। दूसरा गुरु आया, उसने इधर रास्ता बता दिया, अरे इधर कहाँ जा रहे हैं? इधर नहीं, इधर जाओ, तो दूसरी तरफ भटक पड़े। फिर तीसरा गुरु आया, उसने कहा इधर नहीं, इधर जाओ, तो दसियों गुरु मिलते हैं और वो भटकाते रहते हैं, रास्ता मिलता ही नहीं। तो भटकना रात में होता है या दिन में होता है? रात में भटकते हैं। तो रावण राज्य कहा जाता है रात को, जबकि मनुष्य पतित बनते हैं, हैं? मनुष्य पतित रात में बनते हैं या दिन में ज्यादा बनते हैं? रात में। दुनिया में जब रावण राज्य की अपोजिट में रावण राज्य की अति होगी तो दिन रात कुछ भी नहीं देखेंगे, पूरी बंदरों की दुनिया हो जाती है। बंदर दिन रात देखते हैं क्या? नहीं। सतयुग त्रेता में कोई मनुष्य पतित नहीं होता है। सतयुग त्रेता को कहा जाता है स्वर्ग। नाम क्या दिया? क्यों?
स्वस्थिति में,
सब स्वस्थिति में टिके हुए होते। ये स्वस्थिति में टिकना किसने सिखाया? रावण ने। उसके तो अनेक रूप है, वो क्या कहेगा कौन सी स्थिति में टिको? एक स्थिति हो, एक चेहरा हो तो उसको याद किया जाए। उसके तो अनेक चेहरे हैं, किसको याद किया जाए? इसलिए उसको स्वर्ग नहीं कह सकते। वो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं जो गुरु बनकर के बैठते हैं, दसियों धर्म स्थापन कर दिए। वो नर गुरु नरक स्थापन करते हैं और बाप स्वस्थिति के द्वारा स्वर्ग स्थापन करते हैं। बाप है भी सदैव स्वस्थिति में टिकने वाला है, कभी स्वस्थिति से नीचे उतरता है क्या? है कौन सा बाप? शिव बाप। इस सृष्टि पर आता है, पति तन में प्रवेश करता है, अनेकों मनुष्यों के साथ अनेकों प्रकार के संबंध प्रैक्टिकल में शरीर के साथ संबंध जुड़ते भी हैं, फिर भी परिस्थिति से प्रभावित होता है या स्वस्थिति में रहता है? सारी दुनिया कलंक लगाती है, उन कलंकों को ध्यान पर धरता है, कान में सुनता है या सुनते हुए नहीं सुनता है? सुनते हुए भी नहीं सुनता है। इसलिए मुरली में बोला है क्या, कलंक की इधर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौंकने दो। हाथी जाता है तो हाथी के पीछे पीछे कुत्ते भौंकते रहे, तो क्या हाथी क्या उनको पीछे मुड़ करके बाहर करता है? नहीं। तो दुनिया ये बात नहीं जानती है कि स्वर्ग किसने स्थापन किया है? तुम तो जानते हो, क्या जानते हो? अरे स्वर्ग किसने स्थापन किया? स्वर्ग नाम है। रामराज्य किसने स्थापन किया? रामराज्य नाम है। शिवालय किसने स्थापन किया? शिवालय नाम है। तो समझाना चाहिए ये नाम क्यों पड़े, काम के आधार पर नाम पड़े। शिवालय नाम दिया तो जरूर शिव ने स्थापन किया है। स्वर्ग नाम पड़ा तो जरूर स्वस्थिति में रहने वाले ने सबको स्वस्थिति में स्थित कराया। जो जो स्वस्थिति में स्थित हो गए वो ही देवता कहलाए। अब रावण संप्रदाय दस सिरों वाले, दस मुखों वाले, कौन सी मुख की स्थिति में स्थित होंगे? सब तो नहीं स्थित हो सकते। जो पुरुषार्थ करते हैं स्थित हो जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, स्वस्थिति में पहले टिको। तो बताना चाहिए कि बाप ही शिवा शिव बाबा ही शिवा का स्थापन करते हैं। क्या कहा? स्थापन करने वाला कौन है? ऐसे नहीं, शिव बाप। एक्यूरेट अक्षर बोलना चाहिए,
शिव बाबा।
शिव बाप अकेला स्वर्ग स्थापन नहीं करता, शिव बाप को रथ में प्रवेश करते हैं, डबल बनते हैं, प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग तो अकेले करेंगे क्या? प्रवृत्ति मार्ग माने दोनों चाहिए। तो शिव है आत्माओं का बाप और प्रजापिता है पंच तत्व वाले जितने भी देहधारी हैं मनुष्य रूप में, उन सब का बाप। तो ऐसी प्रकृति को आधीन करने वाले साकार स्वरूप में प्रवेश करता है। तो बताओ, शिवालय का उद्घाटन कौन करते हैं? अरे शिवालय स्थापन तो हुआ, शिवालय स्थापन हुआ उसका उद्घाटन कौन करते हैं? किसने किया? वेद के बाप ने शिवालय का उद्घाटन किया, कोई हदा का पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि शिवालय का उद्घाटन नहीं कर सकते। स्वर्ग की स्थापना तो जरूर भगवान ही करेगा ना। अभी तो है शैतानी राज्य, भगवान का राज्य है या शैतान का राज्य? अभी तो शैतानी राज्य है। पाप कहते हैं काम शिक्षा पर चढ़ एकदम कब्रस्तान में आकर पड़े हो। कब्रस्तान में क्या होता है? कब्रें ही कब्रें। कब्रों में क्या होता है? मुर्दे ही मुर्दे। तो सारी दुनिया क्या बन गई? है मुर्दा बन गई। मुर्दे में डंडा मार दो, कुछ फर्क पड़ेगा? है नहीं, मुर्दा तो मुर्दा। तुमको तो बाप आकर ज्ञान की लाठ लगाते हैं, तुम्हारी तो बुद्धि चल पड़ती है। जिनकी बुद्धि चल पड़ती है, मन चिंतन मंथन विचार सागर मंथन करने लग पड़ते हैं, उनको मुर्दा कहेंगे? वो थोड़े ही कब्रस्तान में रहने वाले हैं। इसलिए मुसलमानों की शास्त्रों में लिखा है कि खुदा जब कयामत में आते हैं तो कब्र दाखिल मुर्दों को जगाते हैं, तो मुर्दे उठ खड़े होते हैं। उठ खड़े होते हैं माने विचार सागर मंथन चल पड़ता है। तो अभी तो मुर्दों का राज्य है, फिर यहां ही परिस्थान होगा। परिस्थान माने ज्ञान परियों का स्थान, जहां चारों ओर संसार में ज्ञान की परियां उड़ती हुई दिखाई देंगी। कौन से पंख होंगे? ज्ञान और योग के पंखों से उड़ने वाली परियां। कहां? सत्ययुग में होगा या संगमयुग में होगा? संगमयुग की ही बातें शास्त्रों में दिखाई है। इंद्रदेव के दरबार में स्वर्ग में परियां ज्ञान डांस करती रहती थी, उड़ती रहती थी, ऊंची ऊंची ज्ञान की स्टेज, याद की स्टेज। तो परिस्थान जरूर होगा, आधा कल्प परिस्थान और आधा कल्प कब्रस्थान चलता है। माया रावण कब्रस्थान बनाता है और बाप राम परिस्थान बनाते हैं। बाप आकर के परिस्थान की स्थापना करते हैं, ऐसे नहीं कि बाप ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान सुना जाए फिर बच्चे अपने आप परिस्थान स्थापन करते रहेंगे। नहीं, परिस्थान स्थापन करने के लिए बाप को आना पड़ता है, पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। ज्ञान सुनाना बाप का लक्ष्य नहीं है, बाप का लक्ष्य क्या है? नरक को स्वर्ग बनाना, पतितों को पावन बनाना। ये भी जानते हो अभी तो सभी ही कब्र दाखिल हो, काम शिक्षा पर सब चढ़े हुए हैं, और भी आगे चल करके सभी कब्र दाखिल होने हैं। थोड़ी बहुत जो कमी बची है वो भी अति होगी और अति का फिर अंत होगा। तुम तो सीढ़ी पर अच्छी रीति समझा सकते हो, क्या सीढ़ी के चित्र में नीचे ले जाकर समझाओ, आखिरी सीढ़ियों में ये है ही कब्रस्तानियों का राज्य। क्या कब्रस्तान में कौन होते हैं? भूत प्रेत। इसका राज्य है, ये है ही भूत प्रेतों का राज्य, शैतानी राज्य है, शैतानों का राज्य। इसका विनाश तो जरूर होना ही है। इस धरणी पर अभी कब्रस्तान है, फिर यही धरणी चेंज हो जाएगी, आयरन एज दुनिया बदल करके गोल्डन एज दुनिया हो जाएगी। फिर बाद में देह का सुख भोगते भोगते देवताएं देह में होते हैं या निराकारी होते हैं? बिंदु होते हैं, बिंदु होते हुए भी देह तो होती है ना, सुख कैसे भोगते हैं? सुख या दुख देह के द्वारा भोगा जाता है या बिना देह के सुख दुख भोगा जा सकता है? देह से ही सुख दुख भोगा जाता है। देवताओं में भी देह से सुख भोगा, लेकिन देह में उस समय ममत्व तो नहीं था। जब सतयुग पूरा होता है तो दो कलाएं आत्मा की कम हो जाती है, माने दो कला देहवान प्रवेश हो जाता है। जो मस्तक समान देवताएं थे ऊंची स्टेज वाले, वो दो कलाएं नीचे उतर आते, उनको कहा जाता है क्षत्रिय भुजा समान, चौदह कलाएं रह जाती है। तो धीरे धीरे चेंज होता है, गोल्डन एज से बदल करके दुनिया कौन सी एज में आ जाती है? सिल्वर एज में आ जाती है, चांदी की दुनिया हो जाती है। सोने की कीमत कम होती है या चांदी की? सोने की कीमत बहुत ज्यादा और चांदी की कीमत बहुत कम हो जाती है, तो दो कला कम होगी। तत्वों की भी कलाएं कम हो जाती है, ऐसे नहीं आत्माओं की कलाएं दो कम हो जाती है, पांच तत्वों की भी दो कला कम हो जाती है। त्रेता के बाद तो उपद्रव मचते हैं, ये पांच तत्वों वाली पृथ्वी भी त्रेता के बाद उथल पथल मारती है, आधा विनाश हो जाता है। सतगुरु में तो कोई उपद्रव नहीं मचाते, न मनुष्य आत्माएं जो देवता तुल्य होती है 16 कला संपूर्ण वो भी उपद्रव नहीं मचाते, और पांच तत्व भी सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण होते हैं वो भी उपद्रव नहीं मचाते। त्रेता के अंत में उपद्रव शुरू हो जाते क्योंकि बैलेंस कलाओं का ऊपर नीचे हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। यहां तो देखो इस कलयुग की दुनिया में हर चीज उपद्रव मचाता है, पानी भी कितना उपद्रव मचाता है, सभी माया के गुलाम बन पड़े हैं। क्या ये जल देवता, ये वायु देवता, ये अग्नि देवता जब देवता के रूप में थे तो उपद्रव नहीं मचाते थे। सतयुग में जल देवता दुनिया में बाढ़ लाता था क्या? नदियों में बाढ़ नहीं आती थी, आंधियां नहीं आती थी, और यहां देखो उपद्रव इतने हो रहे हैं। तो सब माया के मुरीद बन जाते हैं, वो जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, ये देवताएं रावण के क्या बन जाते हैं? गुलाम बन जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रावण की जो चारपाई थी उस चारपाई से ये वायु देवता, अग्नि देवता बने हुए रहते हैं। रावण चारपाई पर लेटे लेटे उनको आड़ करता था, ऐसे करो ऐसे किया और लाइट ही लाइट चारों तरफ, रोशनी ही रोशनी, ऐसे किया बस पानी ही पानी चारों तरफ होने लगता, बटन दबाया और नहरों में पानी भरपूर हो गया। तो देखो रावण राज्य में ये देवताएं भी कितने गुलाम बन जाते हैं, सभी माया के गुलाम बन जाते हैं। अभी तुमको रावण का गुलाम बनाना है, इनको जो बाप को याद नहीं करते, आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते, अब तुम तो गुलमई से छूटने वाले हो। ये भी हार और जीत का खेल बना हुआ है। तुम रावण संप्रदाय को गुलाम बना देते हो, इस बात को अच्छी रीति समझना है। क्या है कि रावण संप्रदाय कैसे गुलाम बन जाता है सत्ययुग त्रेता में? रावण संप्रदाय होता है सत्ययुग त्रेता में, गुलाम कैसे बन जाता है? हाँ, रावण संप्रदाय में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो सत्ययुग त्रेता में होती है कि नहीं? कन्वर्ट होने वाली जो अपने धर्म के पक्के ऊपर से आते हैं वो तो कन्वर्ट नहीं होते, जो द्वापर में ही उतरते हैं, कलयुग में ही उतरते हैं, वो आत्माएं कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करती है वो तो सत्ययुग त्रेता से जन्म लेते हुए आते हैं ना। तो कन्वर्ट होने वाले भी कौन संप्रदाय के हुए? और सब रावण संप्रदाय के, फट से दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। तुम राम के प्रभाव में आते हो और वो रावण के प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये बात अच्छी रीति समझना है, अगर नहीं समझते तो गोया कौड़ी मिसल बुद्धि। क्या कहा, क्या बात समझना है? हैं? राम का जब राज्य दिखाते हैं, राजगद्दी दिखाते हैं, तो राम तो गद्दी पर बैठा हुआ है, सीता भी गद्दी पर बैठा हुआ है, फिर दास दासी बनकर के कौन है, किनको दिखाते हैं?
प्रकृति माया,
राजगद्दी के चित्र में राम सीता को जब राजगद्दी का चित्र के रूप में दिखाया गया है तो राजगद्दी में दास दासी के रूप में किन को दिखाया है? कोई छत्र उठा के खड़ा हुआ है, कोई पंखा झुला रहा है, चमर ढुला रहा है, कोई पांव पखार रहा है, ऐसे दास दासी के रूप में कोई दिखाई है कि नहीं दिखाई? कौन है वो? हाँ, जो दूसरे धर्म की बीज रूप आत्मा है वो दास दासी बन जाती है। दास दासी क्यों बन गई? क्योंकि अभी वो लड़ाई लड़ रही है। क्या? सदगुरु की निंदा कराए रही है तो सदगुरु निंदक तो राजगद्दी के टाइम पर सिंहासन पर ठौर नहीं पाते हैं। तो ये हार जीत का खेल है, इसको अच्छी रीति समझना है। क्या? जो द्वापर कलयुग में ऊपर से आने वाली आत्माएं वो हमारा उतना विरोध नहीं करती है। सतयुग में त्रेता में जाने वाले जो पांडवों के साथ कौन गया? कुत्ता गया। कुत्ते के बारे में क्या कहावत है कि 12 साल उसकी पूछ लाठी से बांध करके रखो तो भी सीधी सीधी नहीं होती। ऐसे भाव स्वभाव कड़क संस्कार वाली आत्माएं हैं, पूरी परिवर्तन नहीं होगी, आखिरी में हमको धोखा देंगी और आक्रमण भी करेंगे। आखिरी बार करती है माया रावण के साथ। तो ये हार जीत का खेल बना हुआ है, अच्छी रीति समझना है। अगर नहीं समझते हैं तो गोया कौड़ी मिशन बुद्धि है। क्या कहा? बुद्धि कहां लगी हुई है? न समझते हैं इन बातों को तो बुद्धि कहां लगी हुई है? कौड़ियों में बुद्धि लगी हुई है। हीरे के रूप में हीरो पाटदारी बाप में बुद्धि नहीं लगी हुई है। कहां बुद्धि लगती है? कौड़ियों को याद करने में बुद्धि लगती है। तो कहो इस बुद्धि की कोई वैल्यू नहीं। अभी तो वैल्यूबल हीरा बाप बनाते हैं और बाप ही वैल्यू बताते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्मानमोल कौड़ी बदले जाएंगे। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते तो कौड़ी जैसी वैल्यू थी, अभी बाप को जानते जाते हो तो कौड़ी से हीरे मिसल ज्ञान की चमक मारने वाले बनते जाते हो। हीरे में चमक होती है ना, हीरे को अंधेरे में भी रख दो तो भी चमकता रहता है। अभी बाप आकर हीरे जैसा बना दिया। इस दुनिया में तो अज्ञान का अंधकार बढ़ता ही जाएगा, लेकिन जो हीरे जैसी आत्माएं होंगी, हीरो पाटदारी के बच्चे होंगे, वो फिर भी ज्ञान की चमक चारों ओर फैलाते ही रहेंगे। पहले तो तुम्हारी भी कौड़ी जैसी वैल्यू थी। क्या ऐसी वैल्यू थी? कौड़ी जैसी वैल्यू। तुम्हारी जब कहते हैं तो किसको बोला? नंबर बार बहुत बच्चे हैं जिनकी इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं थी। क्या? चाहे कितने भी पढ़ाई लिखाई पढ़ ले, बीए एमए पीएचडी पास हो जाए, तो भी कोई चपरासी बनाने के लिए तैयार नहीं, पियोन भी बनाने के लिए तैयार नहीं। सैकड़ों जगह अप्लाई करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं। तो कौड़ी जैसी वैल्यू हुई ना कि हीरे जैसी वैल्यू हुई, कौड़ी जैसी वैल्यू, बाप आकर तुमको हीरे जैसा बना। बाप से हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कौड़ी जैसे तुम क्यों बन पड़ते हो? हैं? क्यों बन पड़ते हो? अभी तो बताया फिकरा, हीरे जैसा जन्म अमोलक काहे के बदले जाए, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी उठाए लेते हैं और हीरे जैसा जन्म गवाए लेते हैं। अभी तो तुम ईश्वरीय संतान हो ना, ऊंचे ते ऊंच संतान हो। गायन भी है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, शांति धाम में जब है तो शांति धाम ऊंचे ते ऊंच धाम है, वहां बिंदु बिंदु आत्मा के रूप में रहते हैं, तो वहां कोई वैल्यू है? वहां कोई वैल्यू नहीं, वहां उस मिलन में कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। अभी जो दुनिया वाले हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन जो बीके वाले लोग हैं वो किस रूप में याद करते हैं? अपन को बिंदु आत्मा समझते हैं और परम धाम में बिंदु बाप को याद करते हैं। तो बिंदी आत्मा का बिंदी से मिलन मनाने में कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। फायदा कब है? जब उस बिंदु को साकार में पहचाना जाए, पहचान करके याद करने में बहुत फायदा है। साकार में निराकार को याद करेंगे तो पूरी प्राप्ति होगी, बाप के रूप में प्राप्ति होगी, टीचर के रूप में प्राप्ति होगी, सदगुरु के रूप में प्राप्ति होगी, हर संबंध से प्राप्ति होगी। तो देखो परमधाम जो घर है बाप का, वो तो सिर्फ पवित्रता का स्थान है। यहां तो तुम जीवात्माए हो, क्या जीवन में रहने वाली आत्माएं हो। जीवन में रहते हुए अगर तुम देह में ममत्व न रखो तो सुखी रहते हो, और देह में अटैचमेंट हो जाता है तो इसी दुनिया में तुम दुख हो जाते, दुखी हो जाते। तो इस दुनिया में दुख भी है और सुख भी है। जानते हो परमात्मा बाप को अपना शरीर तो है नहीं, वो शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बाप को जानते हो इसलिए कहते हो बाबा, बाप भी कहते हैं वो बेटे, लौकिक बाप भी कहेंगे। बाल बच्चों आओ तो तुमको टोली खिलाओ, झट से भी बाहे, ये बाप भी कहते हैं। बच्चे आओ तो मैं तुमको बैकुंठ का मालिक बनाऊं, तो जरूर सभी भागेंगे ना। अगर नहीं आते हैं क्या कर, बाप जब बच्चों को बुलावे बैकुंठ का मालिक बनाने के लिए और उस समय बच्चे भाग भाग कर न जावे तो क्या कहेंगे उन बच्चों को? बोल, अभी भी इशारा दे दिया, एक ही ट्रेन चलेगी आखिरी, बाप का ट्रंकाल बच्चों को आवेगा, आओ। और फिर भी सुनी अनसुनी अगर कोई कर दे, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, तो क्या कहेंगे? होशियार कहेंगे या मूर्ख कहेंगे?
मूर्ख।
पुकारते भी हैं हम पतितों को, पावन बनाओ। अभी निश्चय है तो मानना चाहिए ना? बुलाया भी बच्चों ने और आए भी बच्चों के लिए। बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया है, मैं आया। पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं। पतित पावन कोई गंगा आदि के पानी को तो तुम नहीं कहते हो, वो गंगा यमुना इन नदियों का जो ज्ञान जल है वो तुमको पावन नहीं बनाता है। कौन बनाते हैं पावन? चाहे वो चैतन्य नदियां हो और चाहे वो जड़ नदियां हो, वो तुमको पावन बनाने वाली नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप दया।